अगला टॉपिक लेते हैं पेज 23 पे, मुशरिकीने मक्का और हमारे ईमान का मवाजना। अभी से ये बता दूं कि इसको सुनते वक्त शर्म बहुत आएगी। उनको तुम बड़े तपाक से कहते ना मुशरिकीने मक्का और कुफारे मक्का, तो हम भी अपने अपने शहरों का नाम लिख कर, अपने अपने मुल्कों का नाम लिख कर अगर देखें तो बहुत कम फ़र्क दिखेंगे हमें आपस में एक दूसरे से। लाहौर में एक शख्स ने चोरी की। पूछा गया, क्या तुमने चोरी की? उसने कहा, नहीं। कहा, खाओ कसम। वो अल्लाह की कसम खा गया कि अल्लाह की कसम, मैंने चोरी नहीं की। एक और आदमी बैठा हुआ था और वो समझता था कि ये चोर है। इसने कहा, अबे दाता साहब के नाम की कसम खा। वहां आके पकड़ा गया क्योंकि इसने सैयद अली हजवेरी रहमहुल्लाह के नाम की कसम नहीं खाई। और जब मजबूर किया गया कसम खाने पर, तो इसने चोरी का इकरार कर लिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद भी इस्लाम बाकी रहता है। गौर करें, अल्लाह के नाम की कसम खा के इसने कहा कि मैं चोर नहीं हूं, और अल्लाह के नाम की कसम खाते हुए इसको कोई खतरा भी महसूस नहीं हुआ। जब इससे कहा गया दाता साहब के नाम की कसम खा, तो डर गया। ये है शिर्क कि अल्लाह के नाम से ज्यादा किसी और के नाम की अजमत और किसी और के नाम का खौफ दिल में हो। चलिए जरा खुद से पूछे। वहां तो चले बुजुर्ग का नाम लिखा है ना कि जिनके साथ बहुत सारी कहावतें और रवायतें हैं। हम किस किस पे डर जाते हैं? हम तो इंसानों के नाम पे डर जाते हैं। अल्लाह के ना खैर है, वो देख लेगा, नहीं 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 चोर ये नहीं किया। यदि चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए और कोई एक इंसान उसको देख ले, तो इनकार नहीं कर सकता ना। लेकिन अल्लाह ताला के असमी होने का यकीन कितना है। यहाँ से आप देखिए कि बेशौरी की हद है कि अल्लाह के नाम पर इंसान झूठी कसम खाने को तैयार है और किसी इंसान के नाम पर नहीं। कुरान पाक में कुफार और मुशरिकीन का जिक्र है। अब वो लोग जिनके खिलाफ नबी सल्लम ने जिहाद और किताल किया, जंगें की और ज़ख्मी हुए, आपके चचा आपकी बेटी शहीद हुई, इनका ईमान इनका अकीदा क्या है? सूरत अल मोमिनून की आयत 84 में देखिएगा, जब पूछा जाता है, कुल लिमनिल अर्द व मन फीहा इन कुंतुम तालमून, ए नबी इनसे पूछो जो कुछ ज़मीन में है ये किसका माल है? सयकूलूना लिल्लाह, ये कहेंगे सब अल्लाह का है। कौन कहेंगे? कुफारे मक्का। कुल अफला तज़क्करून, इनसे कहिए क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? फिर इनसे पूछो, कुल मर रब्बुस समावाति सब्अ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, सात आसमानों और अर्श अजीम का रब कौन है? सयकूलूना लिल्लाह, वो कहेंगे ये तो अल्लाह ही है और कोई नहीं। कुल अफला तत्तकून, इनसे कहिए फिर अल्लाह का तकवा इख्तियार क्यों नहीं करते? ए नबी इनसे पूछिए, किन से? कुफारे मक्का से। कुल मम भी यदि ही मलकू तो कुल्ली शयन, वो कौन जात है जिसके हाथ में हर चीज की ताकत है? वह यु जीरू, और वो पनाह देता है। वला यु जारू अलई, और कोई उसके मुकाबले में पनाह नहीं दे सकता। इन कुन तुम तालमोन, अगर हो तुम जानते। सयकूलूना लिल्लाह, अन करीब कहेंगे सब अल्लाह का है। कुल फन्ना तुसखरून, कह दीजिए फिर तुम कहाँ से जादू किए जाते हो? असल हिदायत की तरफ क्यों नहीं आते? कुफारे मक्का, जिन्हें मुशरिकीन कहा जाता है, जिनके साथ नबी सल्लम ने जंग फरमाई, इनका अकीदा तो ये है कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह का है। मलकूत कुल्ली शयइन, हर चीज़ की ताकत इख्तियार, हर चीज़ का तसर्रुफ सिर्फ अल्लाह को है, और ये इख्तियार भी सिर्फ अल्लाह को है कि जिसको चाहे पनाह दे, और अगर वो किसी को पकड़ ले तो इसे कोई पनाह दे नहीं सकता। ये कुरान में लिखा हुआ है, यानी ये तो कुरान की आयतें थी ना। इन कुफारे मक्का के मुकाबले में हमारा अकीदा क्या है? जो पकड़े खुदा तो छुड़ा ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पकड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ा कोई नहीं सकता। यानी किस कदर शर्म की बात है कि हम अपने ईमान तौहीद में इस दर्जे पर भी नहीं हैं जिस दर्जे पर कुफारे मक्का थे, जिनके खिलाफ नबी सल्लम ने जंग की। हम इससे भी नीचे चले गए हैं, कोई सोचने समझने वाला नहीं। बात समझ आई आपको? यानी वो भी अल्लाह की तौहीद रबूबियत का इकरार करते थे, अल्लाह के रब होने को मानते थे, सारी बातें मानते थे, लेकिन आज हम मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहकर भी अल्लाह की बात को नहीं मानते। मैं सोचती हूँ कि अगर आज फिगर्स एंड फैक्ट्स को दोहराया जाए तो बहुत सारे मुसलमान गैर मुस्लिम निकलेंगे। हम मुसलमान क्यों हैं? क्योंकि हमारे मज़हब के खाने में इस्लाम का नाम है, पैदा हुए तो हमारे मज़हब में नाम लिख दिया गया था, और इसी तरह की दूसरी चीज़ें थी। लेकिन अगर मैं और आप अपने असल अमल को देखें, अपने कौल और इकरार को देखें, अपने हाल हुलिये को देखें, तो आप देखें कि आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से आज हम मुसलमान होते हुए भी शिर्क की गुत्थियों में फंसे हुए हैं। कितने ज़्यादा लोग हैं ऐसे दुनिया में कि जिनको कलमा भी ठीक तरह से पढ़ना नहीं आता, जिनको सूरत फातिहा भी नहीं पढ़नी आती। आप यकीन करें इस बात पे, उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या सिखाता है, कुरान क्या कहता है। वो कहते हैं जी बस साडा मजहब रोटी कमाना है, बस जी लगे हुए हैं, उस हमें भी पचा ही देगा। और आप देखेंगे जो जितने कम पढ़े लिखे हैं ना, उतने शिर्क में ज्यादा फंसे हुए हैं। पढ़े लिखे लोगों का शिर्क दूसरा है, वो मादा परस्ती के शिर्क में है, वो साइंसिज्म के शिर्क में है, वो अपने आप इकोनॉमिकल सेटअप के शिर्क में होंगे। लेकिन आज हम मुसलमान अगर अपने आप को देखें तो हमारी जिंदगियों में बहुत कम तौहीद है। और आप देखेंगे कि नाम की हद तक ही अगर हम अपने आप को देख लें तो बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि बहुत सारों के नाम भी जो है वो मुशरिकाना नाम है। कई नाम है, मैं इस वक्त कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप नोट करके देखें ना तो कई नामों से शिर्क की बू आती है। अभी शादी हॉल्स थे कुछ, जहां दर्स हुए, प्रोग्राम हुए ना, तो एक आध नाम ऐसा था कि मैं सोच में पड़ गई। कुछ नहीं कहा मैंने, क्योंकि नाम से क्या होगा, काम तो अच्छे ही करा रहे थे, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि नाम एक सोच का इजहार होता है ना, तो नाम से ही पता चल रहा था कि अभी इनको कुरान पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनसे नेकी का काम लिया। तो हमारे मुल्क में इस चीज़ की बहुत कमी है कि हम शऊर के साथ लोगों को दीन की तरफ लें और दीन की तरफ बुलाएं। तो सारी बात का खुलासा क्या निकला कि आज हम मुसलमानों के मुल्कों में शिर्क के इतने अड्डे हैं कि इतने तो मक्का में भी नहीं थे। और इस चीज़ का एहसास जाके आपको अपने मुल्कों में होता है, बिलीव मी। इन मुल्कों में बाहर रहते हुए शिर्क पे कम बात होती है, हालांकि यहाँ शिर्क दूसरी किस्म का है, लेकिन अपने मुल्कों में जहालत की बुनियाद पे। आप देखिए मासियाँ काम करने आएंगी, उनके हाथों में काले रंग के धागे पहने हुए हैं, बच्चा साथ है तो उसके पाँव में काली डोरी बंधी हुई है। फिर इसी तरह काम करने वाले मर्द हैं, मजदूर हैं, गलों में तवीज़ लटके हुए हैं, किसी ने मनके पहने हुए हैं, और नमाजें हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, उनको परवाह ही नहीं है। तो मैं इसलिए अपसेट हो जाती हूँ सोच सोच के कि अल्लाह किस किस महाज पे काम करने की जरूरत है। इन लोगों को कोई इतनी इंटेलेक्चुअल बहसें और तफसीरें सुनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों को आप अगर कुरान के अंदर जो तौहीद के मौजू पे आते हैं वही थोड़ी थोड़ी वाजें कर दी जाएं तो काफी लोगों का भला हो सकता है। और ये शेर कितना आम है हमारे कल्चर में कि मोहम्मद के पकड़े को छुड़ा कोई नहीं सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए इन चीजों से अपने आप को दूर रखने की जरूरत है। फिर गैर अल्लाह से मांगने की मिसाल, इय्याक नस्तईन पर जो कुरान मजीद ने खूबसूरत तमसील बांधी है, इस पर अगर गौर करें कि अल्लाह के सिवा दूसरों से मांगते हो, इसकी मिसाल कुरान मजीद में मौजूद है। मेरा ख्याल है कि सूरत राद है जी, सूरत राद आयत 14, लहू दावतुल हक, सिर्फ अल्लाह ही को पुकारना हक है, यानी सिर्फ हक यही है बंदे का कि अल्लाह को पुकारे। जबकि वल्लज़ीना यदून मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशय्यिन, मगर वो लोग जो अल्लाह के सिवा किसी और से मांगते हैं, यानी दुआएं मांगते हैं, ला यस्तजीबून लहुम बिशय्यिन, वो तो उनकी किसी बात का जवाब भी नहीं दे सकते। है ना, कभी किसी कब्र से आवाज आई, जवाब आया? और जो जिंदगी में लोगों का मोहताज था, लोगों ने उसको नहलाया धोलाया, उसका पेट दबाया, उसके ऊपर कफन लपेटा, उसके मुंह को बांध दिया, उसके नाक में रुई डाल दी, कानों में रुइयां डाल दी, कुछ ना करा, चार लोग उसको उठाकर कब्र तक लेके कुछ ना किया, कब्र खोदी उसमें डाला जिस करवट डाला कुछ ना किया, मट्टी ऊपर डलते ही क्या वो सब कुछ करने वाला हो गया। सिर्फ लोगों को ये एक जुमला समझ आ जाए ना, कब्र में जाते ही वो सब कुछ कर गया तो कब्र से बाहर आकर क्यों ना वो, और चले मान लेते हैं कब्र में जाकर ही वो सब कुछ कर गया तो कम अज कम अपने ऊपर से चंद फुट पड़ी हुई मट्टी तो उतार के बाहर आ जाए, बाहर बैठ के पीर बन जाए, बाहर बैठ के वो आपको बेटे दे, बाहर बैठ के आपके रिश्ते कराए। असल बात यह है कि ये ला यस्तजीबू न लहुम बिशय, ये सिर्फ इनका अपना परसेप्शन है, इनको वो कुछ नहीं देते ना लेते। हाँ इल्ला कबासी थी कफई ही इलल माई, हाँ मगर फैलाने वाला अपनी दोनों हथेलियों को पानी के सामने, कोई शख्स किसी कुएं से पानी ले दरिया से जाए तो यूं कफ ये है ना हथेली, तो हाथ यूं करें ना ऐसे चुल्लू सा बनाएं तो पानी आता है ना। मुशरिक है ये, खुले हाथों से जाकर पानी में जाके यूं हाथ रखे, लियबलुगा फाहु ताकि पहुंच जाए उसके मुंह तक, इसमें खुला पानी है ही नहीं कि जब मुंह तक आते आते वैसे ही खत्म हो जाएगा, वमा हुआ भी बालिगही, ये है ही नहीं वहां तक पहुंचने वाला। तो फैसला क्या हुआ, वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी दलाल, काफिरों की पुकार तो भटकी हुई है, यानी किसी के सामने उसकी कब्र पे उसके सामने जाकर दुआएं मांगे कुछ करें कुछ नहीं मिलेगा, तीरे बेहदफ है वो तीर जो कभी निशाने पे नहीं लगता, मुशरिक की वो दुआ है जो अल्लाह के वहां सिवा से करता है। ये मिसाल बहुत बलीग है यानी बहुत डीप है, दिल में पहुंचती है। पानी की तरफ यूं हाथ करना, इससे दुआ करना और मुतालबा करना कि तुम वहां से उड़ के मेरे मुंह में आओ, मेरी प्यास बुझाओ, इसमें पहला अकीदा तो ये शामिल है कि पानी मेरी बात सुन और समझ रहा है, दूसरा अकीदा यह है कि पानी में इतनी ताकत है कि वो इतने फासले से उड़कर मेरे मुंह में चला आए, यानी हाथ इधर है तो यहां से मुंह में उड़ के ही आएगा ना, तीसरा ये कि पानी इसकी दुआ को कबूल करेगा। फरमाया पानी में इतनी ताकत ही नहीं कि तुम्हारी पुकार यानी दुआ को सुन सके या समझ सके, ना इसमें यह ताकत है कि किसी साइल की तरफ उड़कर जाए और इसकी हाजत पूरी कर सके या इसकी दुआ कबूल कर सके। इन तीन बातों को मुंतबिक कीजिए, मुंतबिक क्या होता है, अप्लाई कर लीजिए, सारे ही आस्तानों बुतों गैर अल्लाह सारे ही मिन दून अल्लाह पर, कि जिस जिस से हम यूं दुआ मांगते हैं इसकी मिसाल पानी की तरह, हम बेशक इनको पुकारते रहें वो सुनने के समझने के लायक नहीं है, हम ये समझते रहे कि वो हमारी मुश्किल हल करेंगे, कुरान कहता है कि वो मुश्किल हल करने के काबिल नहीं है। फरमाया लहू दावतुल हक, सिर्फ अल्लाह को पुकारना हक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डायरेक्ट डायलिंग सिखा दी, फरमाया अल्लाहुम्मा या रब, सीधा नंबर मिला दिया कि करो बात, अल्लाह लाइन पर है तुम्हारी बात सुन रहा है, अल्लाह के साथ डायरेक्ट डायलिंग क्या किया करो, वो हमेशा लाइन पर होता है, इसका नंबर कभी खराब कभी मसरूफ यानी इंगेज नहीं होता, इसकी लाइन कभी नो रिप्लाई भी नहीं होती। बात सच है, कभी आपको याद है पहले दौर में कॉल मिलाई जाती थी, बीच में ऑपरेटर होता था, एक तो पूरा वक्त ये फीलिंग रहती थी कोई और सुन रहा है, और दूसरा ये कि वो एक दो मिनट के बाद बोल पड़ता था अब आपके पास इतने मिनट रह गए, और अभी बात पूरी भी नहीं होती थी तो कट जाती थी। अब उसका और आज के दौर का मुकाबला करें, स्काइप व्हाट्सएप फेस टाइम फलां टाइम सारा दिन बातें करो, डायरेक्ट किसी से बैठ के आमने सामने बात करना और फोन पे बात करना भी बराबर नहीं होता। आज जितने मीन्स है ना मुलाकातों के, तो अब तो हमें पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहिए, आप सारा दिन बात करें, आप इतनी बड़ी तस्वीर करके देख ले माँ को बहन को भाई को जिसको देखना है ना, फिर भी हम क्यों जाते हैं, हम वो लम्स महसूस करते हैं, वो छूना महसूस करते हैं, उसका कुर्ब महसूस करते हैं, चीज़ें आप मंगा ले जितनी टिकट लगाकर आप जाते हैं उससे आधे में तो आपके कपड़े चीज़ें बन के आएंगे, अगर आप शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, अगर सोचा जाए तो हम क्यों जाते हैं, हालांकि सब कुछ है, एक तलब एक ख्वाहिश होती है एक साथ बैठना, मेरे वाले फोन पे लोग ज्यादा बातें करते हैं, गए हो तो वैसे ही होश नहीं होती एक दूसरे की है ना, तो आप इसी से समझे जो मजा आपको अल्लाह से खुद बात करके मिलता है वो बीच में किसी वसीले की जरूरत ही नहीं होती। इस बीच के वसीले की बात करके एक मिसाल है, दरमियानी वास्तों की जरूरत नहीं। रावलपिंडी में एक शख्स ने मुझसे पूछा कि मुझे तौबा करनी है कहाँ कहाँ जाकर कन्फेशन करूँ, कन्फेशन क्या होता है इकरार, मैंने पूछा क्यों, कहने लगा कि पादरी के हाथों जाना पड़ता है, वो बेचारा किसी अंग्रेजी स्कूल का पढ़ा हुआ था। वहां अपने सारे गुनाहों का इकरार करना पड़ता है, फिर जाके वो पादरी तौबा की इजाजत देता है, तौबा में मैं शरीक करता है। आप कहें तो मैं आपके सामने कन्फेशन के लिए आ जाऊं। मैंने कहा, मेरे सामने तौबा मत करो, सिर्फ अल्लाह के सामने करो। यही तो फर्क है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियान से पादरी को हटा दिया, वरना पहले इबादत करना होती थी तो आपको किसी चर्च में जाना पड़ता था। आपने फरमाया, पूरी जमीन मस्जिद है, जहां चाहो इसके हजूर झुक जाओ। पहले अल्लाह को मनाने के लिए किसी अल्लाह वाले का सहारा लेना पड़ता था, किसी के सामने कन्फेशन करने पड़ते थे, इसकी जेब गर्म करना पड़ती थी। फरमाया, अल्लाह ताला हर जगह है, वो सुन रहा है। हर जगह अल्लाह ताला कैसे है? ये भी एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, इसको वाजे कर दूं। क्या अल्लाह ताला हर जगह अपने वजूद के साथ है? जी, इल्म के साथ, समात के साथ और बसारत के साथ। आप लिखिए कि अल्लाह अपने वजूद के साथ सातवें आसमान पे है। ये आज के दौर में बहुत फ्लूट कर दिया गया इस अकीदे को, मुस्लिम्स में भी, नॉन मुस्लिम्स में, मेरे खास तौर पर इंडिया में रहने वाले मजाहिब हैं उन्होंने इसको बहुत ही एग्जेजरेट किया गया। तो असल बात क्या है कि अल्लाह ताला हर जगह है, सुनने के नाते, जवाब देने के नाते, मदद करने के नाते, बिगड़ियां बनाने के नाते, लेकिन वजूद, जैसे इस वक्त मेरा आपका वजूद नॉर्वे में हम बैठे हैं ना, अपने वजूद के साथ अल्लाह ताला सातवें आसमान पे है। रात के आखिरी पहर में पहले आसमान पे आते हैं और लोगों को पुकारते हैं कि आओ मुझसे मांगो। ठीक है, कुरान पाक में आता है, इज़ा सालक इबादी अन्नी फ इन्नी करीब, उजीब दावत दा इज़ा दानी फल यस्तजीबू ली वल यूमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। आपसे मेरे बंदे पूछते हैं कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह को कैसे पुकारें। मैं तो बहुत करीब हूँ, मुझे पुकारने वाला जब भी पुकारता है मैं इसको जवाब देता हूँ, बस इन्हें चाहिए कि वो मुझे पुकारें और मुझसे मांगें और मुझ पर ही ईमान रखें। उम्मीद है कि वो हिदायत पा जाएंगे। क्या पता चला? सूरह बकरा की आयत 186 है कि अल्लाह को पुकारने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं। और आप कभी वो कोई वक्त याद कीजिए जब आप किसी मुश्किल में फंसे हुए थे, किसी तकलीफ में थे, आपको लग रहा था कि बस निकलूंगी नहीं, कोई नहीं निकाल सकता, सारे दुनियावी सहारे टूट जाते हैं, इतने में आपको आयत याद आती है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। आप कहते हैं, अल्लाह आप तो मेरी हर जगह सुनते हैं, आप मेरी यहाँ भी सुने। बिलीव मी, ऐसे जिसको आप कहेंगे ना कि अपसाइड डाउन होती हुई दिखेगी, एक इनकार था दूसरी तरफ इकरार में बदल जाएगा। हालात स्टक थे, आपको लगता था ये काम नहीं होगा, खड़े खड़े दिल में आपने पुकारा, खड़े खड़े वो काम हो जाएगा। और आप अपनी जिंदगी में इन चीजों को लाएं, आजमाया करें अल्लाह को इस मामले में। काम करता वही है, हम झूठी सच्ची तावीलों में पड़ जाते हैं। हाँ, वो एक आदमी आ गया फिर उसने ये काम कर दिया, भाई वो आदमी अभी क्यों आया, उसको किसने भेजा, इस वक्त आप पुकार रहे हैं कौन है सुनने वाला। आप देखेंगे कि यही असल तौहीद है, मैं अपने रब को जब जहां पुकारूंगी वो मेरी बात सुनेगा। और आप इस चीज पे गौर करेंगी, आप असल आपकी जो दौलत है ना वो तौहीद है। कुछ लोग हैं उनको इतना मान होता है अपने रब पे, वो कहते हैं दुआ मांग ली कबूल हो जानी है, सोच के मांगो, गलत चीज मांगी अपने गले पड़ जानी है कि फाइन ना लकू मां साल, तुम जो तुमने मांगा तुमको दिया। कोई दूसरा बदबख्त है वो कहता है मेरी तो अल्लाह मानता ही नहीं है, मेरी तो सुनता ही नहीं है, पीर साहब से मांग लो, बुजुर्गों को कह दो, कोई दूसरा मेरे लिए कर दे, मेरे तो अल्लाह से ताल्लुकात ही ठीक नहीं। ये आपके अपने नसीब की बात है। आप अगर अल्लाह ताला पर मान रखते हैं ना, तो याद रखिए अल्लाह आपका मान कभी नहीं तोड़ता। कह कर देखे, मुझे सेहत मिलनी है, मिल जाएगी, मुझे औलाद मिलनी है, मिल जाएगी, मुझे दौलत मिलनी है, मिल जाएगी, शर्त एक है कि आपको इस बात का यकीन हो। और साथ ही कि नहीं मिली तो इसमें खैर है, नाराज नहीं होना, लेकिन ये जरूर कहें कि मेरा रब तो मुझे आज भी दे सकता है, वो तो रहम कर रहा है मुझ पे कि मुझे ये चीज नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे ये चीज मिल गई मैंने तो और ही आपे से बाहर निकल जाना है। हमारी बात दुआएं अल्लाह सिर्फ इसलिए भी नहीं कबूल करता कि अगर कर दी चीज तो मिल जानी, हमने भाग जाना है, हमारी औकात ही नहीं है इससे ज्यादा बड़ी चीज की। जिस हाल में अल्लाह ने रखा है शुक्र करके गुजार लें, इतना ही बहुत है। हमारे शौहर बहुत ही केयर करने लग जाए, हमारे आगे पीछे फिरने लग जाए, आपको क्या पता हमारा मिजाज ऐसा बिगड़े हम लाडली बेगम की तरह उसके साथ ही सारा दिन रोब डालते रहे, हम अल्लाह के रस्तों से भाग दें। हमारे बच्चे कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते, ये इसी में शुक्र कीजिए। पता चले बच्चे बहुत फरमाबरदार हो गए तो हम तकब्बुर में आ गए। तो असल बात है अल्लाह से राजी रहे। आप देखेंगे जब आप अल्लाह ताला से राजी होते हैं ना, अल्लाह आपसे जरूर राजी होगा। सिर्फ आपको आजमाएगा कुछ चीज़ों में डालकर, लेकिन आप साबित कर दें कि अल्लाह ताला मैं अभी भी नाराज़ कोई नहीं हुई, अल्लाह अब भी मैं कोई नहीं नाखुश, अल्लाह इस वक्त भी मैं कोई नहीं दुखी, अल्लाह ताला मेरा आज भी मूड बड़ा नाइस है, अल्लाह ताला जी आज भी मैं बड़ी रिलैक्स और इंजॉय कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी को। आप किसी बड़े से बड़े दुख तकलीफ में आने के बाद ये कह कर तो देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह आपको फिर दुख में डालेगा। और हम पहले ही रो रहे होते, हाय मैं मर गई, हाय जुल्म, हाय भूखे, हाय उदास, हाय परेशान, हाय ये नहीं, हाय वो नहीं, वो हाय होए करके दुनिया से चले जाते हैं। तो लिख लें एक जुमला, अल्लाह से मोहब्बत के बाद दुख जिंदगी से खत्म हो जाता है, अब सैड नहीं रहते, दुखी तो रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप बीमार हो सकते हैं, फाका हो सकता है, बच्चा बीमार हो सकता है, दुख नहीं आता दिल को। आपके और आपके दिल के बीच में एक शील्ड आएगी, आपको लगेगा कोई 1 फुट दूर ही रोक देता है दुख को। दिल को क्यों नहीं लगता धड़का? बड़े से बड़ा सदमा, अचानक चोट, कोई मर गया, कोई बड़ी से बड़ी चीज छिन गई, 1 फुट दूर दिल से एक शील्ड, आप कहते हैं चलो जानी थी चली गई, मैं तो हूं ना, बच्चे तो हैं ना, शौहर तो है ना, माँ बाप तो है ना, इससे बड़ी तकलीफ तो नहीं आ गई। अगर आपको ये कैफियत महसूस होती है ना, समझे ईमान पे, क्योंकि आपको पता है कि एक मेरी चाहत है एक तेरी चाहत है। मेरी चाहत थी ये सदमा ना मिले, अल्लाह की चाहत थी मिल गया, तो मैं अल्लाह आपकी चाहत पे खुश हूं। इस स्टेज पे अपनी जिंदगी को लेकर तो आए, आपसे दुनिया की नेमतें संभलेंगी नहीं। और हमारे इस नबी के सहाबा ऐसे ईमान वाले थे। क्यों कहते हैं कि दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से रही। याद रखिए दुनिया का हर जर्रा सच्चे मोमिन से डरता है। आपके अंदर ईमान आ जाए, लोग भी डरेंगे, जिन्नात भी डरेंगे, शयातीन भी आपसे डरेंगे, पहाड़ भी आपका रास्ता छोड़ देंगे, पीछे हो जाओ, इसने रुकना कोई नहीं है, इसको जाने दो, इसको रास्ता दे दो, शर्त है कि आप अपने रब के ऊपर वो मान तो रखें। किसी के साथ दुनिया में आपकी दोस्ती होती है, यानी कोई खानदान का बंदा, मिसाल है पुलिसमैन, ऐसे ही एक हमारे यहाँ कहावत है तो वही बोल देती हूँ, पुलिसमैन है या कोई अफसर है या कोई भी गवर्नमेंट का पर्सन है जिसके बहुत रिसोर्सेज हैं, अप्रोच बहुत है, आपकी उसके साथ करीबी रिश्तेदारी है, तो आपके अंदर एक ख्याल पैदा हो जाता है ना, जहां भी जरूरत पड़ी एक फोन करा दूंगी, नाम ही ले दूंगी, मैं फलां की बहन हूं, मैं फलां की बेटी हूं, कह सकते हैं ना। वो कितना कोई बेचारा 6 फुट का, ज्यादा ज्यादा 6.5 का होगा, वो क्या कर सकता है? फोन कर देगा कहीं जी ये जरा इधर फंस गई, इनको निकलने दें, ये इनका सामान निकाल दें, ये इनको छोड़ दें, रोक दें, ये कर, हालांकि हर वक्त वो आपको अवेलेबल भी नहीं है और हर जगह उनकी चलनी भी कोई नहीं है। कई जगह वो कहेंगे भाई मेरा इस फील्ड में ताल्लुक नहीं है। तो जिसकी रिश्तेदारी और जिसका ताल्लुक लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल्स वाली जात से जुड़ जाता है, आप देखें फिर उसकी टौर कितनी होगी, फिर वो तो पूरी दुनिया को आंखों में आंखें डाल के चैलेंज कर सकते हैं ना। यस हो जाएगा, मेरी किसी बहुत बड़ी जात से दोस्ती है, ये है असल तौहीद, फिर सब दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। नहीं होती तो आप कहते हैं छोड़ो करनी नहीं है, दिल से ही निकल जाती हैं वो दुआएं जो कबूल होनी नहीं होती। तो मैं और आप अपने तौहीद के वजन को पहचाने, आज के बाद कभी किसी के सामने दुख ना खोलें, किसी को अपनी बीमारी ना बताएं, किसी से अपनी परेशानी शेयर ना करें, कभी किसी को ये फील भी ना कराएं कि आप किसी बुरे हाल में। ये तौहीद है, खुश दिखें, एक्टिव दिखें, सुस्त ना दिखें। मजबूरियों के नाम लेने वाले मोमिन नहीं होते, सीधी सी बात है, क्योंकि मोमिन कभी मजबूर नहीं होता, उसको पता है मेरा रब मजबूर नहीं है, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जब मेरा रब मजबूर नहीं है तो मैं क्यों मजबूर हूं? मेरी गाड़ी टूटी हुई है, रब के पास तो बहुत गाड़ी है, मेरे लिए पाबंदी है, मेरे रब के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये टेस्ट दे के फिर दर्जा मिलता है, याद रखिए। दो चार टेस्ट पास कर लेना, फिर मिल जाता है एनओसी। ये टेस्ट अपनी जिंदगी से दिलाएं, फिर मौजे ही मौजे। असल जिंदगी तौहीद के साथ जीने में है, असादी, वो कहते हैं ना बंदगी में हुर्रियत है। आप सबसे बेनियाज होके अपने स्टाइल के साथ जीते हैं, आपको परवाह ही नहीं रहती। कोई खुश है, थैंक यू जी आपकी खुशी। आप नाराज हैं, खुदा हाफिज, हमें इसकी फिक्र नहीं है। जान के नहीं किसी को दुखी करते, जान के बदतमीज नहीं होते, जान के किसी को नाराज भी नहीं करते, पर आप बेनियाज होते हैं। लिख लें अपने पास, बेनियाजी चेक करनी है मैंने अपनी। सच्चा ईमान आपको बेनियाज करेगा। अगर अभी आप नहीं हुए ना, तो अभी आपने अपने लिए को लंबा पेंडा रखा हुआ है। आज से बोले मैं हर एक की बात से बेनियाज, हर एक के ताने से बेनियाज, हर एक के इल्जाम से बेनियाज, हर एक की बातों से बेनियाज। मैं कहती हूं वाकई मजनू ही होता है मोमिन, उसको परवाह ही नहीं रहती। वाकई लोग उसको फिर चल्ला, बेवकूफ, पाकार, जज्बाती कुछ भी कह दें, वो कहता है मुझे पता है कि ये काम मेरा रब चाहेगा तो हो जाएगा। अब देखिए ना, आज के दौर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम होते और एक आग जलाई जाती और वो उसमें कूद पड़ते, पूरी दुनिया के कैमरे फिट होते और खबर लगने को तैयार है कि मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, मुसलमान शर पसंद है, देखो ये तो सुसाइड करने लगे हैं, आग में कूदने लगे हैं, हमारी शर्तें नहीं मान रहे। ये कुछ होना था ना, तो इब्राहिम तो कूद गए। उन्होंने तो एक दफा नहीं पूछा कि मीडिया में क्या नाम आएगा। जूं ही कूदे, किस चीज ने इब्राहिम की आग को बुझाया था? ये तौहीद की आग ने बुझाया था। जब तौहीद की ठंडक सीने में होती है ना, तो आग में भी बंदा जलता नहीं है। पानियों में घोड़े दौड़ा दिए चलते, के खुशकी के घोड़े दरियाई दो घोड़े बन गए। ये कैसे हुआ? ये तौहीद की वजह से हुआ। आप मान लें हमारी तौहीद को घुन लगा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? अभी तक हमारे हालात ही नहीं बदले, अभी तक हम चाह रहे थे कुछ हो कुछ हो कुछ हो, हो ही कोई नहीं। नहीं, या तो फिर इसमें मालिक की कोई हिकमत है, या फिर मैंने उससे कहा ही नहीं ठीक तरह। देखिए, दुनिया में जो दुआएं करते हैं ना, वो कबूल ना हो तो हम सोचते हैं अच्छा जी हमने मांगा, अल्लाह ने नहीं दिया। अब इमेजिन करें कि आप किसी से कोई चीज़ कहते हैं, आप अक्सर में अपने भाई को कहते हैं ये दो चार काम है छोटे मोटे, ये करवा दीजिए। अब क्या, अब आप पाकिस्तान जाने वाले हैं तो भाई को क्या गम होगा? आती बहन ने पूछना है इसका क्या हुआ, हुए हुए नहीं छोड़ो, ये बताएं आपने क्या कोशिश की, है ना? और अगर बिलफर्ज उनकी कोशिश में कमी थी तो वो शर्मिंदा होंगे ना। अब आप इमेजिन करें, आप अल्लाह से कुछ मांगते हैं दुआ, क्योंकि यहाँ गैर अल्लाह से मांगने की बात हुई है ना, तो आप अपने ऊपर ले। आप अल्लाह से कुछ मांगे मांगे मांगे, मिला ही नहीं, तो क्या नाउज़ु बिल्लाह कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो अल्लाह ताला आपसे शर्मसार होंगे? क्योंकि हम नहीं कर सकते थे, अल्लाह ताला तो कर सकते थे ना। अल्लाह ताला कहेंगे हाय ये देखो अब मेरी बंदी आ रही है, बेचारी मांगती रही फरिश्तों, मैंने तो इसको सारी जिंदगी दिया ही नहीं। ऐसा नहीं होगा, ये अल्लाह की शान और उसके जलाल के खिलाफ है। जो नहीं मिला, लिख लें, जो आज तक नहीं मिला वो हमने मांगा ही कोई नहीं है, मांग की कमी है। ये कभी हो नहीं सकता था कि मांगो और ना मिले, क्योंकि वह इजा साल का इबादी अन्नी फनी करीब उजीब दावत दा इजा दान। इजा कहते वैन, एज सुन एज, वेन एवर ही विल आस्क मी समथिंग आई विल गिव हिम, आई विल रिस्पॉन्ड हिम। तो लिहाजा ये बड़ी दौलत है, ये तो एक दुनिया पूरी। अभी तक हमने इस मुल्क की सैर कोई नहीं की जो बिल्कुल एक बंदे को रब से जोड़ देती है। इसीलिए जो हमारा ये अहद है, थोड़ी सी इस पर बात करते हैं कि हम कलमा जब पढ़ते हैं तो हमारा रिश्ता किससे जुड़ता है? अल्लाह से हमारे दो अहद हैं। ये जो दो बोल हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कौलो इकरार है, ये कौलो करार है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह हम अहद करते हैं कि आइंदा सिवाय तेरे किसी को माबूद यानी महबूबे हकीकी नहीं ठहराएंगे, किसी से उम्मीदें नहीं बांधेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और ए अल्लाह तेरे तक पहुंचने का जो रास्ता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में है। ये नोट कीजिएगा, मतलूब अल्लाह, लेकिन मतलूब तक पहुंचाने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको कायद मानना है, लीडर मानना है, सैयद मानना है। हम आपकी इत्तबा नक्शे कदम पर चलते हुए तुझ तक पहुंचने का रास्ता निकालेंगे, और तूने जो किताब भेजी है इसको पढ़ेंगे, और जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल किया और अमल करवाया वैसे ही इस पर अमल करेंगे। बात वाज़े, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको दोहराती हूँ, मतलूब अल्लाह, माबूद अल्लाह, महबूब अल्लाह, उम्मीदें जिससे वो अल्लाह, हाथ जिसके आगे फैलाना वो अल्लाह, लेकिन राहबर, रहनुमा, मुर्शद, पीर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्तबा उनकी, नक्शे कदम पे उनके चलना, जो किताब उनके ज़रिए पहुंची उसको अपना कानून बनाना, जैसे उन्होंने उस पर अमल किया और कराया वैसे ही अमल करना। ये दो बातें जिनका हमने अहद किया, इस अहद पर अगर हम अमल शुरू कर दें तो ईमान की मंजिल शुरू हो जाती है। इसको हाईलाइट करेंगे, ईमान की मंजिल होती है, आपको पता है। ये जो बातें मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी ना, ये आखिरी मंजिलों की बातें होती हैं। हर एक का ईमान ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन हमारा गोल यही है। ला इलाहा इल्लल्लाह लाजिम करता है कि हम अल्लाह के कुरान को पढ़ना, समझना, इस पर अमल करना शुरू कर दें। करते हैं। जो कुरान का इनकार करता है ना, मान लीजिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजों का इनकार करता है। पढ़ना, समझना और अमल, तीन चीजें हैं, टू रीड, टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्ट अपॉन। ईमान बिल्ला, अल्लाह की जात पर ईमान, इंसान की शख्सियत में एक जान पैदा कर देता है। मुर्दा है वो लोग जिनका ईमान बिल्ला पुख्ता नहीं है। अलामा इकबाल का एक शेर है, ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, गिरां क्या कहते हैं, बोझ, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। आप शायद इसको नमाज के सजदों पे लेते हैं, लेकिन ये पूरी जिंदगी के सजदे हैं। जो एक अल्लाह से नहीं डरता वो सब से डरता है, जो एक अल्लाह की नहीं मानता ना वो सब की फिर मानता है। इंसान पूरी दुनिया से डरने की बजाय एक अल्लाह को सजदा कर ले तो इसे किसी से ना डरने की ज़रूरत है, ना किसी से मांगने की ज़रूरत है। इंसान के अंदर सिर्फ एक सजदे से कि मैं अल्लाह का हूँ और अल्लाह मेरा है, एक इनकलाब आ जाता है। जिस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का इकरार कर लिया वो मुसलमान हो गया, वहले ईमान में दाखिल हो गया। इसी तरह नबूवत पर ईमान बजाते खुद इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि हमने ये देखा कि थेलिस से लेकर रसल तक 2600 साल की मुद्दत में फ़लसफे की तारीख में फ़लसफियों और हुक्मा ने बहुत ज़ोर लगाया, सिर्फ ये जानने के लिए कि खैर और शर क्या है। ये दो फ़िलासफ़र्स थे जिनका जिक्र हुआ है, मगर पता नहीं चला। इधर आइए, नबी सल्लम के चंद इरशादात से पता चल जाता है कि खैर ये है और शर ये है। कैसे? फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिह। कोई शख्स इस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक कि दूसरे भाई के लिए वही कुछ ना चाहे जो अपने लिए चाह रहा है। ये खैर की बुनियाद है। पूरे फलसफे की तारीख में आपको खैर की इतनी खूबसूरत तारीफ यानी डेफिनेशन नहीं मिलेगी। पीछे हमने पढ़ी ना ये बात, इंसानी ताल्लुकात की असास कह सकते हैं आप इस हदीस को, कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए करो। मौलाना जफर अली खान कहते हैं, जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। बात सही है। तो ये बात बहुत बड़ी बात है, क्या कि खैर और शर के नुक्ते आगाज के लिए अल्लाह के नबी की ये एक बात ही काफ़ी है कि वो करो दूसरों के साथ जो खुद चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। अच्छा, अब यहाँ तक जो बात हुई ना, अब इसमें थोड़ा सा मनी मैटर्स को लेते हैं। तौहीद के साथ माल का क्या ताल्लुक है? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको इंजॉय करेंगे। मुआशी जिंदगी में इस्लाम का एक मोजज़ा ये होती है नबूवत और रिसालत, 1400 साल पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दल्लाल यानी मिडल मैन की इस्लाम में इजाजत नहीं। मिडल मैन यानी दल्लाल को अरबी में समसार कहते हैं। फरमाया, ला समसार फिल इस्लाम, इस्लाम में मिडल मैन नहीं होता। इस पर आप सोचेंगे कि मिडल मैन से इस्लाम को ऐसी क्या तकलीफ है। एक आदमी जो इधर से माल लेता है उधर बेच देता है, कोई कहता है गंदम खरीदनी है, वो कहता है हाँ खरीदनी है, कोई कहता है मुझे गंदम चाहिए, वो कहता है ले लो, वो दरमियान में अपना कमीशन लेता है, इसमें क्या खराबी है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में मिडल मैन की इजाज़त नहीं। अब ये बात आसानी के साथ समझ में नहीं आती। फरमाया, शहरी आदमी देहाती आदमी के लिए माल फरोख्त ना करें। अब ये बैक का एक असूल है इधर। हालांकि आप देखिए हमारे मुल्क में कितना आम है, हर चीज़ में मिडल मैन है, बीच में वो लेते भी हैं देते भी हैं बेचते हैं। खैर, इसकी डिटेल क्या हुई ये पता उस वक्त चला जब मैं अमेरिका में था। अमेरिका के यहाँ बड़े पढ़े लिखे सियाने लोग हैं, इनके यहाँ तमाशा ये होता है, सारी मईशत मिडल मैन पर चल रही है। ये फार्म है, इस फार्म में गंदम काश्त हुई, इसके पास 1000 मन गंदम रखी हुई है। अब एक मिडल मैन है, इसके पास एक धेला भी नहीं, सिर्फ एक छोटा सा दफ्तर है और एक टेलीफोन। ये है इसकी कुल कायनात। वो इस फार्म वाले को टेलीफोन करता है कि पता चला है कि तुम्हारे पास 1000 मन गंदम पड़ी हुई है, इसे बेचोगे? इसने कहा हाँ बेचूंगा, क्या भाव है? $10 फी मन। ठीक है, सौदा हो गया, ये गंदम मेरी हो गई और किसी और को नहीं बेचनी। अब यही मिडल मैन एक तीसरे आदमी से बात करता है कि तुम्हें गंदम चाहिए थी, 1000 मन गंदम मेरे पास है, लोगे? क्या भाव है? $13 फी मन। इसने कहा ठीक है, सौदा हो गया, गंदम वहीं पड़ी हुई है। $3 इसने फी मन पर कमा लिए, $3000 हो गए, $13000 में गंदम बिक गई, सौदा हो गया। अब वो किसी और को फोन करता है कि गंदम चाहिए तुम्हें, क्या भाव है? $15 में इसने बेच दी, $2 इसने जेब में डाल लिए। वो आगे इससे ज्यादा $17 में बेच देता है, आगे फिर $20 में, गंदम वहीं पड़ी हुई है। यूँ एक मिडल मैन, फिर दूसरा मिडल मैन, फिर तीसरा मिडल मैन, आखिर जब गंदम फार्म से उठती है तो $20 फी मन पर उठती है। बाजार में $20 फी मन बिकती है, इसलिए कि 4-5 मिडल मैनों ने अपना मुनाफा ख्वाम ख्वाम में कमा लिया। क्लियर हुई बात? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक कोई माल बेच नहीं सकता जब तक कि पूरी तरह इसका मालिक ना बन जाए। करना क्या था आप इसको समझिएगा, जिसने शुरू में खेत वाले से खरीदी थी ना $3 प्रॉफिट पे, उसको वहां से उठवानी चाहिए थी और अपने पास लेकर अब ये इसकी हो गई, फिर सौदा करे आगे। ये जो हवा में तलवारें चलती हैं, और आप देखिए हमारे पूरे मुल्क का निज़ाम भी इस पर, आप ज़मीन खरीद लें, आप सोना चांदी खरीदें, कपड़ा बेचे खरीदें, वो बीच वाले बैठे ऑफिस में, और वो किसान जिसने इतनी मेहनत करके $10 में बेची ना, हो सकता है उसको $1 नफ़ा मिला हो मंथ पे, जिसने 6 महीने मेहनत की सब किया, और ये मिडल मैनों ने बैठे बैठे 2-3-4% कितना कमा लिया। मालिक बनने की दो शर्तें, एक ये कि जो माल तुमने खरीदा इसकी पूरी कीमत अदा करो, और मजे की बात यह कि ये जुबानी फैसला सौदा करते हैं, आगे बेच के उससे पैसे लेके देते हैं। तो आपको इस्लाम क्या कहते हैं, पहले जो चीज़ खरीदी है हाथ से पैसा दो फिर खरीदो। दूसरी शर्त यह कि जो माल खरीदा है इस माल को इसकी जगह से उठाकर अपनी जगह पर ले जाओ। जब तक ये दो शर्तें पूरी नहीं होंगी, इस वक्त तक तुम मालिक नहीं बने और तुम्हें माल आगे फरोख्त करने का कोई हक नहीं। अब आप गौर कीजिए, वो पहले वाला मिडल मैन जिसने $10 फी मन पर खरीदी, अगर इसकी कीमत भी अदा कर देता और इसको फार्म से उठाकर बाजार में ले आता, तो गंदम क्या भाव बाजार में बिकती? $12 फी मन में, और अब वो कितने में बिकी? 20 या 25 में, यानी डायरेक्ट वो ही ले जाता अपनी चीज, तो सस्ती मिलती ना लोगों को। $20 या $25 फी मन, खाना खराब हुआ आम लोगों का। क्लियर हुई बात? जितने मिडल मैन आएंगे उतनी चीज आम लोगों के हाथ में महंगाई के साथ पड़ेगी, महंगी पड़ेगी उसको। दुनिया का कोई माहिर इक्तसादियत यानी इकोनॉमिस्ट अभी तक मिडल मैन को बंद नहीं कर सका, ये इस कदर बेवकूफ लोग हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहानत और इनकी बलागत को देखें कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं। मिडल मैन को बंद कर दिया, सारी महंगाई खत्म हो गई। वो गंदम जो $20-25 में बिक रही थी, वो $12 में बाजार में आ गई। इस एतबार से रिसालत और नबूवत पर ईमान सिर्फ आखरत तक नहीं, बल्कि दुनिया को वो आपके लिए जन्नत बना देता है। क्या सीखा इस बात से? जब अल्लाह पर ईमान होता है ना, तो जो अल्लाह ताला ने कहा होता है ना, उसके मुताबिक भी बंदा अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाता है। अब ये तो आपने एक चीज पढ़ी है ना, अगर आपको मौका मिले और आप हदीस से किताबुल बिजू पढ़ ले, बै कहते हैं लेन देन को, ट्रेडिंग, तिजारत, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा तिजारत कर सके आज के दौर में। वो कहेगा 25-30 हज़ार की नौकरी अच्छी, मुझे लाखों नहीं कमाना, इतने लूप होले। हमें तो एक सूद दिखता है, वो ही नहीं अभी तक छोड़ सके। हमारे अपने इकोनॉमिकल सिस्टम में इतनी खराबियां, इतनी खराबियां कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और सब नुकसान किसको पहुंच रहा है? आम लोगों को। महंगाई दिन ब दिन बढ़ी। आप कभी हैरान होते हैं, आप अपने मुल्कों में जाकर इस वक्त जब चीजों की कीमतें देखते हैं, मेरा तो माइंड अभी तक डॉलर में ही चलता है, शुरू से आदत जो थी उसकी। तो मैं सोचती हूँ कि रहते आप पाकिस्तान में और कीमतें आप अमेरिका वाली दे रहे हैं, यकीन करें, कॉमन बंदा, यानी 200 रुपए किलो अगर सब्जी ले रहे हैं तो 2 डॉलर किलो हुई, तो अमेरिका में आज भी 2 डॉलर के किलो आलू मिल ही जाते होंगे। ये हालात है। जो चीज आप 100 की सोच के पूछेंगे ना, मान लीजिए वो 1,000 होगा। आप सोचें ये 1,000 की तो होगी, वो 5,000 होगी। और मैं सोचती हूँ कि हम यहां से जाने वाले ऐसी शौकिया देखते हैं, लोगों को देख लेते देते पूछते हैं, जो वहां रहते हैं वो कहाँ से लेते हैं? पैसा है तो खा रहे हैं ना। आप सोचते हैं हमारे मुल्क गरीब मुल्क है, जितना पैसा और जितनी चीजें वो हमारे मुल्कों में, वो इधर नहीं है। लेकिन बेबरकती है, शिर्क की वजह से, तौहीद नहीं है। इसलिए मुझे और आपको इन सारी चीज़ों का हिसाब रखना होगा, और इंशाल्लाह ये डीलिंग्स में आएगी बात डिटेल से इंशाल्लाह।